एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिन्होंने सोचने का एक बिल्कुल ही अलग ढांचा दिया, बारूक स्पिनोजा।
नमस्कार।
हाँ, 17वीं सदी के दार्शनिक, लेकिन जिनके सवाल मतलब आज भी उतने ही जरूरी लगते हैं।
और इस सफर में हमारी गाइड होंगी रॉजर स्क्रूटन की किताब स्पिनोजा। ये किताब सुना है, उनके मुश्किल विचारों को थोड़ा आसान बनाती है।
जी हाँ, स्क्रूटन कोशिश करते हैं कि स्पिनोजा के जो घने जटिल विचार हैं उन्हें आम पाठक तक पहुंचा सकें।
और ये जरूरी इसलिए है क्योंकि आज भी हम सब कहीं ना कहीं विज्ञान, तर्क, फिर वो आस्था और जीवन का अर्थ, इनके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश में लगे हैं, है ना?
बिल्कुल। और स्पिनोजा ने शायद मतलब 350 साल पहले ही इस गुत्थी को सुलझाने का एक रास्ता दिखाया था। एक ऐसा रास्ता जो ना तो पूरी तरह से पारंपरिक धर्म का है और ना ही वो एकदम रूखा भौतिकवाद।
हाँ, ये तर्क और प्रकृति को गहराई से समझकर एक तरह का संतोष पाने का रास्ता है। तो चलिए देखते हैं स्क्रूटन हमें स्पिनोजा तक कैसे ले जाते हैं।
हाँ, पर स्पिनोजा में गोता लगाने से पहले थोड़ा ये जान ले कि हमें उनके बारे में बताने वाले लेखक रॉजर स्क्रूटन वो कौन थे।
जरूर। रॉजर स्क्रूटन 1944-2020 वो ब्रिटेन के एक बहुत जाने माने दार्शनिक और लेखक थे, और उन्हें अक्सर उनके कह सकते हैं रूढ़िवादी राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारों के लिए पहचाना जाता था।
हाँ, और यही बात तो इसे और दिलचस्प बनाती है। मतलब एक तरफ स्पिनोजा जो अपने टाइम के हिसाब से बड़े रेडिकल थे, धर्म और समाज की मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ स्क्रूटन जो परंपरा और स्थापित मूल्यों के समर्थक माने जाते थे।
पर स्क्रूटन की खासियत ये थी कि दर्शन की उनकी समझ बहुत गहरी थी। मतलब यूरोपियन फिलोसफी हो या एनालिटिकल, वो पकड़ रखते थे और मुश्किल विचारों को भी वो कहते ना साफ और सरल भाषा में समझा सकते थे।
सही कहा। स्क्रूटन सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते, वो स्पिनोजा के दर्शन के जो गहरे आध्यात्मिक पहलुए हैं, यहाँ तक कि जो उसमें एक तरह की सुंदरता है, उसे भी पकड़ते हैं।
अच्छा।
वो दर्शन को सिर्फ दिमागी कसरत नहीं मानते थे, बल्कि ये देखते थे कि ये हमारे जीवन को दिशा और शायद अर्थ कैसे दे सकता है। हो सकता है उनका अपना जो पारंपरिक झुकाव था, वो उन्हें स्पिनोजा के सिस्टम की भव्यता और तर्क की जो स्थिरता है उसे सराहने में मदद करता हो, भले ही वो उसके हर नतीजे से सहमत ना हो।
तो ये किताब अगर संक्षेप में कहें तो है किस बारे में?
मूल रूप से ये स्पिनोजा के जो क्रांतिकारी विचार हैं उनका एक परिचय है, और इसे इस तरह लिखा गया है कि जिसे दर्शन की पहले से जानकारी ना भी हो वो भी उनके जो मुख्य सिद्धांत हैं उन्हें समझ सके।
और स्क्रूटन का मुख्य तर्क क्या है इसमें?
स्क्रूटन का मुख्य तर्क ये है कि स्पिनोजा ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बिल्कुल अनोखा सिस्टम बनाया, एक ऐसी दार्शनिक प्रणाली।
हाँ?
ये सिस्टम कोशिश करता है मानवीय स्वतंत्रता को, जो हमें लगता है कि हमारे पास है, उसे प्रकृति के जो अटल नियम है, जिसे स्पिनोजा आवश्यकता या नेसेसिटी कहते हैं, उसके साथ मिलाने की।
ओह, ये तो विरोधाभासी लगता है, स्वतंत्रता और अटल नियम।
हाँ, पहली नजर में स्पिनोजा का दर्शन बहुत ज्यादा तार्किक, यहाँ तक के क्या कहते हैं, नियतिवादी, डिटर्मिनिस्टिक लग सकता है, जैसे सब कुछ पहले से तय है और हमारे हाथ में कुछ नहीं।
हाँ, तो फिर आजादी कहाँ बची? मतलब कोशिश करने का क्या फायदा अगर सब तय है?
बिल्कुल। यहीं पर स्क्रूटन हमें गहराई में ले जाते हैं। वो दिखाते हैं कि इसी नियतिवादी दिखने वाले ढांचे के अंदर ही स्पिनोजा मानव स्वभाव, सच्ची नैतिकता और असली खुशी पाने का रास्ता खोजते हैं।
अच्छा।
हाँ, किताब इसी बड़े सवाल से जूझती है, एक ऐसे ब्रह्मांड में जहां सब कुछ प्राकृतिक नियमों से बंधा हुआ लगता है, जहां शायद हमारी वो फ्री विल या स्वतंत्र इच्छा एक भ्रम है, वहां हम एक सार्थक और नैतिक जीवन कैसे जी सकते हैं?
और स्पिनोजा का जवाब क्या है स्क्रूटन के अनुसार?
स्पिनोजा का जवाब, जैसा स्क्रूटन समझाते हैं, वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहते हैं सच्ची आजादी मनमर्जी करने में नहीं है, बल्कि चीजों के होने की वजह उस आवश्यकता को समझने में है और खुद को प्रकृति के उस तार्किक क्रम के साथ अलाइन करने, मतलब संरेखित करने में।
चलिए इसे और खोलते हैं। स्पिनोजा का जीवन। स्क्रूटन बताते हैं कि उनका जन्म एम्स्टर्डम में हुआ था, एक संपन्न यहूदी परिवार में।
जी, पुर्तगाली मूल की यहूदी समुदाय में, लेकिन उनके विचार इतने मौलिक थे और स्थापित मान्यताओं से इतने अलग कि सिर्फ 23 साल की उम्र में 1656 में उन्हें समुदाय से बाहर निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया।
सिर्फ 23 साल की उम्र में? ये तो बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा उनके जीवन में।
हाँ, स्क्रूटन मानते हैं कि इस बहिष्कार ने उन्हें एक तरह से आजाद कर दिया, किसी भी धार्मिक सिद्धांत या सामाजिक दबाव से मुक्त, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ तर्क के आधार पर अपने विचारों को विकसित कर सकें।
और उनका बाकी का जीवन भी फिर वैसे ही रहा, मतलब एकांत और अनुशासन वाला?
बिल्कुल, वो कहीं प्रोफेसर नहीं बने, कोई बड़ा पद नहीं लिया, बल्कि लेंस घिसने का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ये काम अपने आप में ही स्पष्टता और बारीकी का प्रतीक है ना?
हाँ, है तो।
उनका शांत, लगभग एकांत जीवन बाहरी दिखावे से दूर, बस सत्य की खोज पर केंद्रित था, उनके दर्शन की तरह ही।
अब आते हैं उनके सबसे मशहूर काम एथिक्स पर। स्क्रूटिनिस की जो अनोखी शैली, उसमें काफी जोर देते हैं। ज्यामिति की किताब की तरह लिखा है, परिभाषाएं, स्वयं सिद्ध सत्य, फिर प्रमेय। ये कुछ अजीब नहीं है दर्शन के लिए?
अजीब लग सकता है, पर स्क्रूटिन समझाते हैं कि स्पिनोजा का मकसद था दर्शन को गणित जैसी निश्चितता देना। वो दिखाना चाहते थे कि वास्तविकता का एक तार्किक ढांचा है जिसे हमारा दिमाग पूरी तरह समझ सकता है, जैसे हम ज्यामिति समझते हैं।
अच्छा।
और इस पूरी इमारत की जो नींव है वो है उनका सबसे क्रांतिकारी विचार कि इस पूरे ब्रह्मांड में मौलिक रूप से सिर्फ एक ही चीज है, एक ही तत्व, एक ही सब्सटेंस।
सिर्फ एक? तो फिर ये इतनी सारी चीजें जो हमें दिखती हैं, इंसान, जानवर, पेड़, पहाड़, हमारे विचार, ये सब क्या है फिर? और वो एक तत्व है क्या?
स्पिनोजा उस एक तत्व को कहते हैं Deus sive nature।
Deus sive nature, ईश्वर या प्रकृति?
हाँ, यानी ईश्वर और प्रकृति एक ही चीज है। ईश्वर कोई अलग आसमान में बैठा दुनिया बनाने वाला नहीं, बल्कि ये पूरी प्रकृति, ये पूरा ब्रह्मांड ही ईश्वर है। ये एक बहुत गहरा सर्वेश्वरवाद है, पैंथियज्म है।
तो
और जो बाकी सब चीजें हमें दिखती हैं, इंसान, पेड़, विचार, भावनाएं, वो सब उसी एक तत्व के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं, मोड्स हैं। जैसे समुद्र एक है और लहरें उसी की अलग अलग अस्थाई अभिव्यक्तियां हैं।
तो मतलब मैं, ये माइक सुनने वाले सब उसी एक ईश्वर प्रकृति का हिस्सा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और मन और शरीर, वो तो अलग लगते हैं ना, उनका क्या?
स्पिनोजा के लिए वो भी अलग नहीं है। स्क्रूटन इसे स्पिनोजा का अद्वैतवाद या मोनिज्म कहते हैं। मन और शरीर दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जो किसी रहस्यमयी तरीके से जुड़ी हों, बल्कि वो उसी एक तत्व, उसी सब्सटेंस के दो पहलू हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं जिन्हें हम अनुभव करते हैं। एक है विचार, थॉट, और दूसरा है विस्तार, एक्सटेंशन, यानी भौतिक आकार।
जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू?
बिल्कुल, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। जो चीज भौतिक रूप में मौजूद है, शरीर, वही विचार के रूप में भी अनुभव की जा सकती है, मन। दोनों एक साथ चलते हैं, समानांतर।
वाह, ये तो सच में दुनिया को देखने का एकदम अलग नजरिया है। अच्छा, अगर मन और शरीर एक ही चीज के दो पहलू हैं, तो फिर हमारे भावनाएं, हमारे जज्बात क्या हैं? गुस्सा, खुशी, डर? स्क्रूटन स्पिनोजा के इस पहलू को कैसे समझाते हैं?
स्क्रूटन बताते हैं कि स्पिनोजा के अनुसार हर जीवित चीज में एक बुनियादी प्रवृत्ति होती है, जिसे वो गुनाटस कहते हैं।
गुनाटस?
हाँ, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने और उसे बढ़ाने का एक अंदरूनी सहज प्रयास है। हमारी भावनाएं मूल रूप से इसी गुनाटस में होने वाले बदलावों का मानसिक अनुभव है।
बदलाव मतलब?
मतलब जब हमारी शक्ति या क्षमता बढ़ती है तो हमें खुशी, जॉय महसूस होती है, और जब ये घटती है तो दुख, सैडनेस होता है। ये सबसे बुनियादी भावनाएं हैं।
लेकिन हमारी जिंदगी तो ज्यादातर ज्यादा जटिल भावनाओं से भरी होती है, गुस्सा, जलन, नफरत, डर। ये तो हमें अक्सर काबू में कर लेती हैं, हमारी शक्ति बढ़ाती हुई तो नहीं लगती?
बिल्कुल, स्पिनोजा इन्हें निष्क्रिय भावनाएं या पैसिव इमोशंस या जुनून या पैशंस कहते हैं। स्क्रूटन समझाते हैं कि ये इसीलिए निष्क्रिय हैं क्योंकि ये बाहरी कारणों से पैदा होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझते नहीं हैं।
अच्छा।
जब हम इन भावनाओं के वश में होते हैं तो हम असल में परिस्थितियों के गुलाम होते हैं। हम सिर्फ प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, सोच समझकर काम नहीं कर रहे होते। स्पिनोज़ा इसे ही मानव बंधन कहते हैं, जब हम बाहरी ताकतों और अपनी अधूरी समझ के शिकार होते हैं, दुखी और असहाय महसूस करते हैं।
तो फिर इस बंधन से छुटकारा कैसे मिलेगा? अगर सब कुछ नियमों से बंधा है, आवश्यकता के तहत हो रहा है, जैसा आपने कहा, तो क्या हम कभी आजाद हो सकते हैं? यहीं पर शायद सबसे बड़ा सवाल आता है ना?
हाँ, और यही स्पिनोज़ा का जवाब सबसे शक्तिशाली है और शायद सबसे मुश्किल भी। स्क्रूटन के अनुसार स्पिनोज़ा कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि हम जो चाहें कर सकें, यानी फ्री विल।
क्यों?
क्योंकि ये जो चाहें वाली इच्छा खुद ही शायद हमारी अज्ञानता का नतीजा है। सच्ची स्वतंत्रता है आवश्यकता को पहचानना।
आवश्यकता को पहचानना मतलब?
मतलब चीजों के होने की वजहों को, उनके पीछे के जो अटल कारण है, उनको तर्क से समझना।
यानी ज्ञान ही स्वतंत्रता है, पर सिर्फ कारण जान लेने से क्या होगा? मान लीजिए मुझे पता है कि ट्रैफिक जाम क्यों लगा है, तो भी मैं फंसा तो रहूंगा ही, गुस्सा तो आएगा ही।
अच्छा सवाल है। स्पिनोज़ा के लिए सिर्फ कारण जानना काफी नहीं है, बल्कि उस कारण की पूरी श्रृंखला को, उसके अनिवार्य स्वभाव को गहराई से समझना है। इसे वो पर्याप्त विचार बनाना कहते हैं।
पर्याप्त विचार?
हाँ, जब हम अपनी भावनाओं, जैसे ट्रैफिक में फंसने पर होने वाले गुस्से के बाहरी और अंदरूनी कारणों को, जैसे मेरी अपनी अधीरता या शायद गलत उम्मीदें, पूरी तरह तर्क से समझ लेते हैं, तो वो निष्क्रिय भावना, वो जुनून, एक सक्रिय भावना में बदल जाती है।
बदल जाती है? कैसे?
गुस्सा शायद समझ में बदल जाए, या कम से कम स्वीकृति में। हम परिस्थिति के शिकार नहीं रहते, बल्कि उसे समझने वाले बन जाते हैं। हम बाहरी स्थिति को शायद न बदल सके, पर उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया और अपनी मानसिक अवस्था को बदल सकते हैं।
तो ये एक तरह की दिमागी थेरेपी जैसा हुआ, समझ के जरिए भावनाओं पर काबू पाना।
बिल्कुल, हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और इस प्रक्रिया का जो शिखर है, उसे स्पिनोज़ा कहते हैं ईश्वर का बौद्धिक प्रेम, अमोर दे इंटेलेक्चुअलिस।
ईश्वर का बौद्धिक प्रेम, ये क्या है?
स्क्रूटनिस स्पष्ट करते हैं कि ये किसी पर्सनल गॉड के लिए भक्ति या इमोशनल प्रेम नहीं है, ये वो गहरी शांत खुशी, स्थिरता और एकात्मता की भावना है जो पूरे ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति के तर्कसंगत, आवश्यक और सुंदर क्रम को समझने से पैदा होती है।
अच्छा,
ये जानने का आनंद है कि सब कुछ एक तार्किक व्यवस्था का हिस्सा है और हम भी उसी का हिस्सा है, एक तरह की बौद्धिक शांति।
ये तो हुई व्यक्तिगत मुक्ति और शांति की बात, लेकिन स्पिनोज़ा समाज और राजनीति के बारे में भी सोचते थे ना, और उनके विचार उस जमाने में तो बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी माने गए होंगे। धर्म के बारे में क्या कहते थे वो?
हाँ, बिल्कुल क्रांतिकारी। स्क्रूटन बताते हैं कि स्पिनोज़ा ने बाइबल और दूसरे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्हें ईश्वर की सीधी आवाज मानने से इनकार कर दिया।
अच्छा, तो फिर क्या माना?
उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज हैं जिन्हें उस समय के लोगों ने अपनी समझ और अपने माहौल के हिसाब से लिखा, इसलिए इनका आलोचनात्मक विश्लेषण जरूरी है, इन्हें जस का तस मान लेना ठीक नहीं।
लेकिन क्या धर्म को पूरी तरह नकार दिया?
नहीं, पूरी तरह नहीं। उन्होंने माना कि संगठित धर्म का एक सामाजिक उपयोग हो सकता है, जैसे लोगों को नैतिक व्यवहार सिखाना, समाज में शांति बनाए रखने में मदद करना, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि इसे कभी भी राजनीतिक सत्ता का या सच जानने का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहिए।
तो फिर राज्य या सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए उनके हिसाब से?
स्क्रूटन के अनुसार स्पिनोज़ा मानते थे कि राज्य का मुख्य काम है शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्यों? ताकि नागरिक तर्क का प्रयोग कर सके और अपनी क्षमताओं का विकास कर सके।
अच्छा, मतलब एक सुरक्षित माहौल देना।
हाँ, और इसके लिए सबसे जरूरी शर्त क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड स्पीच।
ये तो आज भी बहुत बड़ी बात है।
बिल्कुल, स्पिनोज़ा ने जोर देकर कहा कि सरकार को लोगों के विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये असंभव भी है और खतरनाक भी। एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज वही है जहाँ लोग बिना डर के अपने विचार व्यक्त कर सकें और उन पर बहस कर सकें। ये बातें उन्हें आधुनिक उदारवाद और धर्मनिरपेक्षता के शुरुआती पैरोकारों में से एक बनाती हैं।
तो स्पिनोज़ा के इस विशाल दर्शन से, जिसे स्क्रूटन ने समझाया है, कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो हम याद रख सकते हैं, मतलब की टेकअवेज?
हाँ, कुछ मुख्य बातें जरूर हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी बात है वास्तविकता की एकता। ईश्वर, प्रकृति, मन, शरीर, सब कुछ एक ही परम तत्व का हिस्सा है।
वो ड्यूस सवे नाचुरा वाली बात।
जी, ये हमें अलगाव की भावना से मुक्त कर सकता है और चीजों के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करा सकता है। ये थोड़ा थोड़ा हमारे यहाँ के वसुधैव कुटुंबकम या अद्वैत वेदांत जैसा लग सकता है, पर इसका आधार पूरी तरह तर्क है, ना कि धार्मिक आस्था।
दूसरी बड़ी सीख क्या होगी?
दूसरी है कि तर्क ही मुक्ति है। ज्ञान सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि एक शक्ति है जो हमें अपनी भावनाओं और परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाती है। ये एक तरह की मानसिक आज़ादी है।
तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी मुश्किल आने पर भावनाओं में बहने की बजाय रुककर सोचना, विश्लेषण करना, वो इसी रास्ते पर चलना हुआ?
हाँ बिल्कुल। तीसरा, नैतिकता प्रकृति में ही है। सही गलत का फैसला किसी बाहरी आदेश या किताब से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि क्या चीज हमारे अस्तित्व, हमारी शक्ति और समझ को बढ़ाती है, वो अच्छा है, और क्या चीज उसे घटाती है, वो बुरा है।
ये आज के सेक्युलर जमाने के लिए नैतिकता का एक मजबूत आधार हो सकता है ना?
हाँ बिल्कुल। चौथा, आध्यात्मिकता का एक नया रूप। स्पिनोजा धर्म को खारिज नहीं करते, बल्कि उसकी एक तर्कसंगत प्राकृतिक व्याख्या देते हैं।
मतलब
वो दिखाते हैं कि विस्मय, जुड़ाव और शांति की गहरी भावना के लिए किसी अलौकिक शक्ति या चमत्कारों में विश्वास करना जरूरी नहीं है। प्रकृति के नियमों की सुंदरता और तर्क को समझना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है।
और पांचवा,
भावनाओं को समझना, दबाना नहीं। स्पिनोजा भावनाओं को तर्क का दुश्मन नहीं मानते, वो उन्हें विचार का ही एक रूप मानते हैं जिन्हें समझकर निष्क्रिय से सक्रिय बनाया जा सकता है। ये आज की जो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात होती है उसके बहुत करीब है।
अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना, ये सब बहुत दिलचस्प है। स्पिनोजा के लेखन में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। स्क्रूटन ने कुछ पर जोर दिया है ना, जो उनके दर्शन का निचोड़ सी लगती हैं। कुछ देखें?
जरूर। जैसे ये कि स्वतंत्र व्यक्ति मृत्यु के बारे में सबसे कम सोचता है, और उसका ज्ञान मृत्यु पर नहीं बल्कि जीवन पर ध्यान है।
वाह, ये कितनी आशावादी बात है। मतलब दर्शन का काम मौत के डर से निपटना नहीं, बल्कि जीवन को भरपूर समझने और जीने में मदद करना है।
हाँ, और ये भी बहुत गहरा है। एक भावना जो एक पैशन है, जैसे ही हम उसका एक स्पष्ट और विशिष्ट, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट विचार बनाते हैं, जुनून बनना बंद कर देती है।
ये सीधा सीधा उनकी वो थेरेपी वाली बात हो गई। जिस चीज को हम समझ लेते हैं वो हम पर हावी नहीं हो सकती। अपनी भावनाओं के मालिक बनना संभव है।
बिल्कुल। और रिश्तों के लिए ये कितना जरूरी है। घृणा का बदला लेने पर बढ़ती है, और दूसरी ओर प्रेम से नष्ट की जा सकती है।
हाँ, मतलब नफरत का जवाब नफरत से देना आग में घी डालने जैसा है। सिर्फ समझ और सकारात्मक भावनाएं जैसे प्रेम या तार्किक स्वीकृति ही उसे शांत कर सकती हैं। ये तो हुई गहरी बातें, पर क्या हम वाकई इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं? मतलब ये सिर्फ किताबी बातें तो नहीं है।
स्क्रूटन की किताब पढ़कर तो लगता है कि ये बहुत व्यवहारिक हो सकता है, जैसे स्पिनोजा की भावनाओं की समझ। अगली बार जब बहुत गुस्सा आए या चिंता हो, तो हम रुककर खुद से पूछ सकते हैं, इस भावना का असली कारण क्या है? क्या ये बाहरी हालात हैं, या मेरी कोई अंदरूनी समझ या उम्मीद है जो पूरी नहीं हो रही?
हाँ, सिर्फ ये सवाल पूछना भी शायद उस भावना की पकड़ को थोड़ा ढीला कर दे।
बिल्कुल। और ये विचार कि हम सब एक ही बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, शायद हमारे अहंकार को कम करने में मदद कर सकता है।
कैसे?
जब किसी से मतभेद हो, तो ये याद रखना कि वो भी उसी प्रकृति का हिस्सा है, अपनी समझ और हालात के हिसाब से जी रहा है। शायद हमें ज्यादा सहनशील और सहानुभूतिपूर्ण बना दे, तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय समझने की कोशिश करना।
सही बात है। और आज के जमाने में जहां हर तरफ से सूचना और राय का हमला हो रहा है, स्पिनोजा का तर्क पर जोर यह हमें आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने की प्रेरणा देता है।
हाँ, किसी भी बात को, चाहे वो कितनी ही आकर्षक क्यों ना लगे, उसे मानने से पहले उसके पीछे के तर्क और सबूतों को देखना। क्या ये बात सच में मंतकी है, मतलब लॉजिकल है?
और उनका वो ईश्वर ही प्रकृति है वाला विचार, क्या वो हमें पर्यावरण के प्रति ज्यादा जिम्मेदार बना सकता है?
हाँ बिल्कुल। अगर प्रकृति ही ईश्वर है, तो उसका सम्मान करना, उसकी देखभाल करना सिर्फ उपयोगिता की बात नहीं रहती, बल्कि एक तरह की पूजा या नैतिक कर्तव्य बन जाता है। ये समझना कि हम प्रकृति से अलग नहीं, उसी का हिस्सा हैं।
हाँ, तो मेरे लिए स्पिनोजा से और स्क्रूटन की इस व्याख्या से सबसे बड़ी सीख यह है कि दर्शन कोई सूखी अकादमिक चीज नहीं है। ये तर्क और समझ के जरिए एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन जीने का एक व्यावहारिक नक्शा हो सकता है।
हाँ, ये मुश्किल हालात में भी मन की शांति पाने का एक रास्ता दिखाता है।
और मेरे लिए स्वतंत्रता की उनकी परिभाषा बहुत असरदार है। ये सोचना कि असली आज़ादी चीज़ों के होने की वजह को गहराई से समझने में है, ना कि सिर्फ अपनी मनमर्जी करने में, जो शायद पूरी तरह संभव भी ना हो।
हाँ,
यह हमें उन चीज़ों को स्वीकार करने की ताकत देता है जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और अपनी ऊर्जा उन चीज़ों पर लगाने के लिए प्रेरित करता है जिन्हें हम समझ सकते हैं और शायद बदल भी सकते हैं, खासकर अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को।
हाँ, ये एक तरह से गीता के निष्काम कर्म जैसा लगता है, पर पूरी तरह तर्क पर आधारित।
तो स्पिनोज़ा स्क्रूटन के जरिए हमें दिखाते हैं कि ज्ञान की प्यास और खुशी की तलाश साथ साथ चल सकती हैं।
बिल्कुल, तर्क और गहरी शांति एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। ये रास्ता शायद आसान नहीं, पर बहुत संतोषजनक हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।